نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 سے لے کر اور انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے آیت 73 تک. اللہ تعالی ہمیں آج کی آیات سیکھنی سمجھنی اور ان پر عمل کرنے کو آسان فرما دے. اس سے پہلے کہ ہم آگے تفسیر دیکھیں کچھ باتیں پچھلے سبق میں سے کرنی ضروری ہیں. ایک یہ پہلی بات آیت نمبر 53 سے جہاں پہ یہ ہے کہ آپ دعوت کے بغیر کہیں نہ جائیں, جب تک دعوت نہ دی جائے کھانے کی اس وقت تک نہیں جا سکتے. اس میں ایک پوائنٹ اور بھی یہ ہے کہ دیکھیں جب ہمیں کسی کے گھر سے دعوت آتی ہے کھانے کی آئے, شادی کی آئے, کسی بھی اوکیزن کی آئے, تو جتنے افراد کو بلایا گیا ہو اتنے کو ہی لے کے جایا جائے. یہ نہیں کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں چلو بھائی تم بھی چلو, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, اسے کیا فرق پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو ساتھ لے جانا ہوتا تھا اگر تو پہلے میزبان سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ کیا میں اس کو لے کر آ سکتا ہوں, اور وہ لوگ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتے تھے, کہہ دیتے تھے اگر لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں لا سکتے تو انکار کر دیتے تھے, لیکن بلا اجازت نہیں کسی کو لے کر جاتے تھے. یہ ہمیں سمجھنا ہے. بعض لوگ ہمارے ملکوں میں شادیوں میں بلا اجازت ایسے ہی بس کپڑے پہن کے اچھے اور شادیوں میں گھس جاتے, کھانا پینا کھا کے اور نکل جاتے, کہ دولہا والے سمجھتے ہیں دلہن کی طرف سے ہیں, دلہن والے سمجھتے ہیں دولہا کی طرف سے ہیں, تو کوئی بھی ان کو کچھ نہیں کہتا, کھایا پیا اور نکل گئے. تو جب تک یہ پھر حرام ہو جاتا ہے جب تک اجازت نہ دی جائے. دیکھیں یہاں پہ صاف الفاظ میں ہے نا, لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى الطعام. تو نبی کے گھر کی ہی صرف بات نہیں ہے کہ کسی گھر میں بھی بغیر کھانے کی اگر اجازت نہیں ہے لی ہوئی, دعوت نہیں آپ کو دی گئی ہے, تو اس طرح گھس جانا صحیح نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, نمبر ٹو بات یہاں پہ ہم نے دیکھا ایک اور چیز آیت نمبر 52 میں ہی دیکھیں, الا ما ملکت یمینک, مگر جو آپ کے دائیں ہاتھ کے انڈر ہیں. اور دوسرا یہ ہم نے آیت نمبر 50 میں بھی دیکھا کہ وما ملکت یمینک. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں لونڈیاں مراد اس سے. اب لونڈیاں کیا آج کے دور میں بھی موجود ہیں؟ کیا آج کوئی اپنی نوکرانیوں کو لونڈی سمجھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں ایک بیوی ہے اور باقی میں نے دو تین لونڈیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں, یہ میری لونڈیاں, ان سے میں اپنا تعلق بھی کر سکتا ہوں کیونکہ اسلام میں تو ایسا ہے. یاد رکھیے کہ جو آج کی نوکرانیاں ہیں یہ آزاد عورتیں ہیں, یہ لونڈیاں نہیں ہیں. آج کے دور میں لونڈی ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں. کیونکہ لونڈی کس طرح سے ہوتی ہے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں دو طرح سے اس زمانے میں لونڈیاں ہوا کرتی تھی. ایک تو یہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے, جو آزاد عورتیں ہوتی تھیں, بچے ہوتے تھے ان کو پکڑ لیتے تھے, کوئی قافلہ جا رہا ہے یا کچھ ہے, ڈاکہ ڈالا, ان کا مال لوٹ دیا, عورتوں بچوں کو سلیو بنا کے اور پھر منڈی میں بیچ دیا, جیسے حضرت زید کو بیچا گیا تھا. ایک یہ طریقہ ہوتا تھا. دوسرا جنگوں میں عورتیں قید کی جاتی تھیں اور وہ لونڈیاں بنائی جاتی تھیں. اب دیکھیں کہ اسلام نے اس چیز کو تو حرام کر دیا کہ کوئی آزاد انسان جو ہے اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا, تو وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا کہ کوئی ڈاکہ ڈالا اور کوئی عورت پکڑ لی, کوئی بچہ پکڑ لیا اور ان کو بیچ کے اور پھر بنا دیا, تو وہ تو بالکل ختم ہو گیا. نمبر ٹو ایک اور طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جنگ میں وہ عورتیں جو جنگ میں حصہ لیتی ہیں ان کو جب قید کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو خلیفہ وقت ہوگا, ایسے نہیں کہ خود ہی سے لوگ کریں, صحیح پراپر واقعی اللہ کے دین کی خاطر جہاد ہو رہا ہو قتال ہو رہا اور اس کے اندر کوئی عورتیں پکڑی جائیں, پھر امیر جو ہے وہ ان کو مال غنیمت جیسے تقسیم ہوتا ہے اسی طرح ان عورتوں کو بھی تقسیم کیا کرتے تھے اور وہ پھر لونڈیاں بنا کرتی تھیں. تو یہ دوسرا طریقہ. اب آج کے دور میں نہ تو ایسی کوئی جنگ ہو رہی ہے, نہ ایسی کوئی خلافت ہے, نہ ایسی کوئی امیر, نہ ایسی کوئی مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے. ہاں قیامت تک کے زمانے میں اگر کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے جس میں ایسا ہوتا ہے تو پھر ہاں ہو سکتی ہیں, لیکن جو آج کا دور ہے اس کے اندر کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کر کے کسی عورت کو پر دسترازی نہیں کر سکتا کہ کہے کہ نہیں جی یہ بھی لونڈی ہے اور لونڈیوں کا تو ہمیں اجازت دی گئی. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. اچھا تیسری بات آگے آئیے, یہاں پہ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے درود کی ضرورت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ کی پہلے سے رحمتیں ہیں, پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ایک چیز سے پاک کیا ہوا ہے, وہ ان کے لیے پہلے سے ہی مغفرت ہے, پھر ہم کیوں درود پڑھتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود رحمت للعالمین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمتیں ہیں. تو بات ایک تو بات یہ سمجھ لیں کہ جب دعا مانگی جاتی ہے, یہ دعا ہے نا, درود کیا ہے, ایک دعا ہے. ٹھیک ہے, جب دعا مانگی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ مانگ رہے ہیں. بعض دفعہ اس لیے بھی مانگی جاتی ہے, مثلاً ہے کہ آپ کسی کوئی بہت مالدار سیٹھ ہے, اس کو کوئی دعا دیتا ہے کہ اللہ تیرے تجھے مالدار کرے, تجھے اور مالدار کرے, تیرے اوپر مال کی برسات کرے, تجھے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کیا کہ امیر آدمی جو سیٹھ آدمی ہے میری اس دعا سے خوش ہو کے مجھے کچھ عنایت کر دے. ٹھیک, ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دوام کے لیے, کہ ہمیشہ تیری یہ دولت قائم دائم رہے, اس وجہ سے. تو ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت نہیں ہے, جن کے اوپر فرشتے درود بھیج رہے ہوں ان کو کیا ضرورت ہے, جن کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتیں برسا رہا ہو ان کو کیا ضرورت ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کبھی اتار ہی نہیں سکتے جو ان کا احسان ہمارے اوپر, کبھی نہیں اتار سکتے ان کا احسان. تو اب مطلب بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے, مگر ہم ان کے لیے دعا کر کے نہ کچھ اپنی طرف سے ایک, میں بدلہ نہیں اس کو کہوں گی لیکن کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کچھ کچھ کچھ. ہم اپنی طرف سے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب ہم دعا ہی دے سکتے ہیں, تو اب ہم ایک دعا دے رہے ہیں, تو یہ ان کے احسان کے بدلے کے اندر ہم ان کا احسان مانتے ہوئے ہم جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اور دعائیں کریں اور دعائیں کریں ان کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم دعا کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا نا ہمیں کہ ہم درود بھیجیں, تو اس لیے ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے یہ درود پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو رحمتیں ہیں ہی ہیں, اللہ اس بات سے خوش ہو کے ہمارے پر بھی اپنی رحمتیں اپنا کرم کر دیں. ٹھیک ہے, اسی لیے تو پھر درود کافی ہو جاتا ہے انسان کے سارے غموں کے لیے, ان کے لیے سب کے لیے درود کافی ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ورنہ ہمارے درود پڑھنے سے کوئی ان کے جتنے درجے ہیں اس سے اوپر نہیں چلے جانا, ان کا تو آلریڈی ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام وسیلہ عطا فرمانا ہے, مقام محمود عطا فرمانا ہے. تو ہمارے کہنے سے نہیں ہے وہ تو پہلے سب سے اوپر ایک جو مقام ہے وسیلہ کا ان کو ملنا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ نہیں ہے ہمارا کوئی احسان کہ ہم بڑے درود پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. نہیں, ورفعنا لك ذکرك, اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا, اب اور ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اپنی اس کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آخر کوئی کسی بادشاہ اس کو کچھ عنایت کرتا ہے تو وہ بادشاہ کو شکریہ کرتا ہے, بادشاہ کو اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے, یہ کیا دے سکتا ہے, یہ ایک فقیر ہے. تو اب وہ شکریہ ادا کرتا ہے, صرف ایسے گریٹیچیوڈ ہے, اتنا شو کرتا ہے کہ میں اس آپ کے احسان کو مانتا ہوں. اسی طرح ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مان رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پر بہت بڑا احسان کیا. تو तो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, यानी उनको ये शो करना चाहते हैं कि मैं आपके एहसान को मानती हूँ, तो उसके लिए जितना ज्यादा दुरूद पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। तीसरी बात, ये कहना हराम है कि अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है अपने नबी पे, ये नहीं। मैंने आपको बताया था जब अल्लाह की तरफ निस्बत की जाती है सलात की, तो मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी के बैठ के अल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ये जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये नहीं इस तरह से है। बल्कि मैंने आपको साफ मीनिंग बताया कि सबके लिए मीनिंग डिफरेंट है, उसको समझें कि क्या मीनिंग है। ये बात अगर कभी मुंह से निकली हो कि वो तो अल्लाह दुरूद पढ़ता है तो हम क्यों ना पढ़े, ये तो कितनी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, क्या क्या नहीं किसी के मुंह से जब ये, और वाकई सुना हुआ है कि इस तरह से लोग बात करते हैं तो समझ ही नहीं है कि क्या कह रहे हैं। ये होती है कि जब इंसान को इल्म नहीं होता ना, तो फिर वो ऐसी बात, सलात का मतलब क्या ये तो समझो, जब अल्लाह ताला के लिए कहोगे तो डिफरेंट होगा। जैसे हम तौबा का आप देख रहे हैं, अल्लाह के लिए कहेंगे तो डिफरेंट बात है, लोगों के लिए कहेंगे तो डिफरेंट बात होगी। इसी तरह जब हम सलात का लफ्ज अल्लाह ताला के लिए कहते हैं, तो हरगिज ये ना समझे कि जैसे हम दुरूद पढ़ते हैं इस तरह अल्लाह ताला दुरूद पढ़, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो जाएगी। अच्छा जी, फिर किसी जगह पे किसी मजलिस के आखिर में खड़े होके दुरूद पढ़ना, जैसे मिलाद वगैरह में वो लोग पढ़ने लगते हैं या कुछ है, इसकी कोई भी कहीं दलील नहीं मिलती। हमें ये कहा गया अजान के बाद दुरूद पढ़ा जाए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया अजान के बाद दुरूद पढ़ने का। हमें ये नहीं फरमाया कि अजान से पहले पहले अजान ही की एक लय में जैसे अजान दी जाती है उसी तरह तुम दुरूद भी पढ़ो, सलातु वसलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इस तरह करके फिर उसके बाद अजान शुरू करनी है और पूरा ये पढ़ के, इसको भी नहीं सिखाया गया। अगर इसको कोई ये समझ के कि एक तरीका बना लेता है हमेशा का, तो ये एक बिद्दत बन जाती है फिर। इसी तरह इज्तमाई तौर पे दुरूद ऐसे खड़े होके पढ़ना और वो, और ये जहन में रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं और सुन रहे हैं और इस महफिल में आ गए हैं, ये भी हराम है। ये भी इस तरह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आपने हाजिर नाजिर समझ लिया, तो फिर तो अल्लाह ताला की मतलब उसमें से सिफात में से एक चीज कर दी कि अल्लाह ताला जैसे वो हर जगह को देख रहा है, हर जगह को सुन रहा है, हर जगह का उसको खबर है, इल्म है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो गए। तो इस तरह से नहीं। हाँ, अगर आप ऐसे यानी ये अकीदा रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायबाना तौर पे आप एक पढ़ रहे हैं, ये बात को समझते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, वैसे हम ऐसे जैसे तशहुद में हम कहते हैं, अत्तहियात में कहते हैं सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि, तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ये नहीं सोच रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, सलाम अलैका का की जमीर तो सामने वाले के लिए होती। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था, सहाबा कराम को सिखाया था, खुद सिखाया है बुखारी और मुस्लिम में, ये तशहुद में जो अत्तहियात पढ़नी है बुखारी और मुस्लिम में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऐसे ही सिखाया, सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे ही नमाजें पढ़ी, और हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं मौजूद होते थे, लेकिन वो इसी तरह पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ये इसी तरह से वो पढ़ते रहे। तो जहन में ये अकीदा ना हो कि आप सुन रहे हैं, हमारी हाजतें पूरी करेंगे, जिस जुबान में भी हम पढ़ेंगे दुरूद वो आपको, आप सुन रहे हैं, ये अकीदा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि हमारा दुरूद अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं जो कि हमारा दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पेश करते हैं, तो उस लिहाज से इस जो मैंने आपको अकीदा बताया, इसके बगैर अगर गायबाना तौर पे इंसान कहता है अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह, एक पढ़ता है दुरूद पढ़ता है, तो तब सही है। लेकिन अगर वो इस किस्म का अकीदा रखता है जैसे कि जो मैंने आपको भी बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं, हमारी मजलिस में आ गए, ये वो सब गलत है, और इसके लिए ही खड़े हो जाते हैं और फिर पढ़ने लगते हैं ये इस रिस्पेक्ट में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो गए आ गए, ये सब फिर गलत हो जाता है। और इसी तरह एक मजलिस में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार आ रहा है, बार बार लिया जा रहा है, तो एक दफा कम से कम एक दफा जरूरी है कि दुरूद पढ़ा जाए। बार बार हर दफा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मुस्तहब है, लेकिन एक दफा पढ़ना वाजिब है कि आप जरूरी है कि आप एक दफा कम अज कम पढ़ें, ठीक है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी एक दुरूद है, उसमें सलात भी आ गई और उसमें सलाम भी आ गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। आगे आज का सबक शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सूरत कब नाजिल हुई है? मदनी दौर में, 5 हिजरी में, ऑलमोस्ट यानी मिड समझ लें मदनी दौर का। और आप देख रहे हैं कि घरेलू जिंदगी के बारे में अहकाम दिए जा रहे हैं, औरतों को कई अहकाम दिए गए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात को कई अहकाम दिए गए। अब यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया है, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, ए नबी आप कह दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया, क्या किसको कह दीजिए? ली अजवाजी का, अपनी बीवियों को कह दें, वह बनाती का, और अपनी बेटियों को कह दें। सबसे पहले किसको कहें? अपनी बीवियों को। उसके बाद किसको कहें? अपनी बेटियों को। अच्छा, इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी एक से जायद थी और बेटियां भी एक से जायद थी, क्योंकि बाज लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सिर्फ एक ही बेटी थी और वो हजरत फातिमा थी, और बाकी बेटियां जो थी वो सौतेली थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सगी बेटियों की बात आ रही है, क्योंकि बाकी जो जितनी भी औरतें वो तो सारी निसाइल मोमिनीन में आ गई ना। आगे वह निसाइल मोमिनीन, और निसा निस्वत उनकी जमान। अच्छा, अब निसा औरतें मोमिनों की, मोमिनों की औरतों से भी कह दें, यानी जितनी मुसलमान औरतें हैं उनसे भी कह दें। इससे यहाँ पता चला कि तमाम औरतों से, मगर सबसे पहले आप अपने घर की औरतों से शुरू करेंगे तबलीग को, इस बात को कहना, पहले अपनी बीवियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी औलाद को, फिर उसके बाद बाहर जो जितनी ईमान वाली औरतें। हमें इससे सीक्वेंस भी पता चल गया कि जब तबलीग करनी है तो किस तरह से एक आदमी को तबलीग करनी होगी, ये वो अपने घर से शुरू करे फिर उसके बाद बाहर करे। अगर ये नहीं करेगा वो कि अपने घर का पहले वेट करे कि पहले तो ये सुधर जाए तो फिर मैं बाहर वालों को तबलीग शुरू करूंगा, इसका नहीं, बताना उनको शुरू करेंगे, ये नहीं कि उनको इग्नोर करके बाहर वालों को बता रहे हो। मगर ये जरूरी है कि बता दिया तो अब इसके बाद आगे भी काम जारी रखे, क्योंकि हो सकता है कि घर वाले तो कभी भी ना माने, तो हो सकता है बाहर वाला कोई मान ले। अच्छा, अब क्या उनको हुक्म है जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि आप कह दीजिए, तो जरूरी कोई यानी इंपॉर्टेंट ही हुक्म होगा ना। क्या करें ये सब औरतें? युदनीना, लटका लें, अलैहिन्ना, आला है, इला नहीं है, ये भी नोट कीजिए यहाँ पे। इला होता है तरफ, आला होता है अपॉन, अपॉन का माना तो इंग्लिश में आप समझते हैं ना, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से डाल लेना। अपॉन का माना ये होता है, ऑन एक अलग चीज होती है, अपॉन एक अलग चीज होती है, ठीक है। इंग्लिश से जो वाकिफ है उनको ये बात समझ आ रही होगी कि अपॉन में और ऑन में क्या फर्क है। अलैहिन्ना, ऊपर से अपने, मिन से जलाबीबिहिन्ना, जिलबाबों में से, अपने जिलबाबों में से कुछ हिस्सा अपने ऊपर से लटका लें। ये हुक्म दिया जा रहा है औरतों को कि जब औरतें अपने घर से निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी। सूरह नूर में हम पढ़ चुके हैं पहले घर के अंदर के लिबास का जिक्र, हालांकि सूरह नूर सूरह हुजरात के बाद नाजिल हुई है, लेकिन वहां पे हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ वो आयात आ गई है कि औरत जब घर से बाहर जाएगी तो ऐसे नहीं उठ के चली जाएगी कि जो घर में पहना हुआ है उसी तरह उठ के चल पड़े। शौहर के लिए घर में तैयार होके बैठी हुई है, मेकअप करके बैठी हुई है, पूरी अपनी बनाओ सिंगार के साथ बैठी हुई है, तो उसी तरह हम बाहर भी निकल गए, चाबी पकड़ी और चल पड़े। या जैसे अपने और महरम रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं वैसे ही हम बाहर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जब वो बाहर जाने लगे हैं तो वो लटका लें अपनी चादरों में से कुछ हिस्सा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि जिलबाब क्या है, जिलबाब वो बड़ी चादर है जो सर से लेके पैर तक को ढांप ले, वो है जिलबाब कहलाती। अब इसके अंदर फरमाया गया कि कुछ हिस्से को लटका लें। अब ये कैसे लटकाया जाएगा, इसको हजरत इब्ने अब्बास ने इसकी तफसीर में बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो किसी जरूरत से अपने घरों से निकलें तो अपने सरों के ऊपर से ये चादर लटका कर चेहरों को छुपा लें और सिर्फ एक आंख खुली रखें, यानी सिर्फ देखने के लिए, रास्ता देखने के लिए आंख को खुला, यानी जितना ज्यादा अपने चेहरे को छुपा सकती हैं उतना छुपा के निकलें, और यानी सिर्फ देखने की हद तक हो इतना कि रास्ता वगैरह नजर आ जाए। कुरान करीम में आप देखेंगे कि ये जो पर्दे की आयात हैं, 7 आयतें नाजिल हुई हैं, 4 सूरह अजाब में हैं, 3 सूरह नूर में हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने सूरह अजाब में पढ़ा है कि औरतें वकरना फी बुयूती कुन्ना, अपने घरों में बैठे हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि जब बाहर निकलें तो तबर्रुज ना करें, तबर्रुज के बगैर बाहर जाएं, और तबर्रुज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो भी हमने देखी है कि तबर्रुज कहाँ यानी कैसे कैसे होता है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर औरत के लिए 5 चीजें आती हैं कि अपने जिस्म के जो हुसन है, अपनी बॉडी की नुमाइश ना करें, जेवरात की नुमाइश ना करें, पहने हुए कपड़ों की नुमाइश ना करें, रफ्तार में ऐसे नाजो अंदाज ना हो कि अपनी यानी चाल जो है वो ना नाजो अंदाज वाली हो, और परफ्यूम ऐसी खुशबुआत का इस्तेमाल ना करें कि जो फैलने वाली हो। ये सब तबर्रुज की चीजें हैं जो बता दिया गया कि तबर्रुज नहीं करना, ठीक है, वो उससे मना कर दिया गया। और फिर ये भी बता दिया गया कि आवाज में भी ऐसा ना हो कि आवाज ऐसी लोचदार हो, चाहे ऊपर हिजाब लिया हो लेकिन आवाज में ऐसा हो कि दूसरों को मायल करने वाली हो, अट्रैक्टिव बना के, या इस किस्म की आवाज, या इस तरह की से बात की जाए कि दूसरे का दिल मायल होने लगे, कोई उसके अंदर दिल में बात आ जाए, बल्कि स्ट्रेट बात की जाए, टू द पॉइंट बात की जाए, और कोई उसमें नाजो अंदाज और हंसियां खिलखिलाहटें और इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने सूरह नूर में भी देख लिया कि किस तरह औरतों से कहा गया है कि आप अपने जो दुपट्टे हैं वो अपने सीनों के ऊपर डाल लो, और हम आयात पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि किस तरह से औरतों को वहां पे बताया गया कि इस तरह से करो, और दूसरे ये कि कौन कौन से आपके रिश्ते हैं जिनके सामने आप जा सकते हैं, उसके अलावा जितने लोग हैं उन सब से ही हिजाब होगा, पर्दा होगा, उन सब के सामने नहीं जाया जा सकता बगैर हिजाब के। ये हम पढ़ चुके हैं। याद रखें सतर और हिजाब में फर्क है। सतर और हिजाब का जो हम फर्क नहीं ना पता होता तो फिर हम सतर को कवर करना ही काफी समझते हैं। औरत के लिए औरत के सतर की हदूद क्या है, नाक से घुटने तक, और मर्द से क्या है, मर्द का मर्द से सतर भी वही है नाक से घुटने तक, लेकिन औरत का मर्दों से पूरा जिस्म ही सतर है सिवाय चेहरे के और हाथों के, यानी चेहरा आपने आपका सारा है, आपके हाथ हैं और पैर भी इसी में कयास किए गए, ये आप अपने भाई हैं, बाप हैं, ये सब इनके सामने खोल सकते हैं, ये महरम रिश्ते हैं इनके सामने खोले जा सकते हैं, ये सतर है। हिजाब इसका मतलब इस ऑन टॉप ऑफ इट कुछ होगा, जाहिर है सतर और हिजाब एक ही चीज तो नहीं है ना। तो ये तो वो चीजें हैं यानी चेहरा और हाथ पैर, ये महरम रिश्तेदारों के सामने खोले जा सकते हैं, ठीक है। अब ना महरमों के सामने कोई औरत इससे भी कम में चली जाए जिसमें सिर्फ महरम के आगे जा सकते थे, मसलन बाजू आधे कर ले, गला डीप कर ले, गर्दन खुली हुई हो, टांगे भी आधी कैप्रीज पहन के आधी खोल ले, तो ये जायज नहीं है। ये तो महरम उसके आगे भी नहीं खोल सकते, तो इसलिए सतर और हिजाब में फर्क को समझें, और सतर को किसी के सामने भी नहीं नंगा कर सकते सिवाय जैसे शोहर के आगे। तो ये ऐसे यानी ममनू और रिस्ट्रिक्टेड समझ लें इंसान के बॉडी पार्ट्स होते हैं जो सतर के हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार कभी नंगे ना रहो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जो तुमसे कभी जुदा नहीं होती माँ सिवाय रफा हाजत के और अपनी बीवी के मुबाशरत के औकात में, लिहाजा उनसे शर्म करो, यानी फरिश्ते होते हैं साथ उनका एहतराम करो। इसलिए इंसान को अकेले में भी, पूरे घर में कोई अकेला, बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी ये है, लो मैं तो अपने कमरे में ही अकेली हूँ ना, कमरा लॉक कर दिया और नंगे होके बैठ गए, अपने सतर भी खोल लिया, ये नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी नहीं है तब भी इंसान के साथ फरिश्ते तो है ना, इसी वजह से मुर्दे का भी आप सतर नहीं देख सकते, मुर्दे का। और कहां ये कि यहाँ पे आज के वक्त के अंदर औरतें सतर भी खोले घूम रही, यानी हिजाब का तो दूर की बात है, सतर भी खुल गया। तो सतर जरूरी है चाहे कोई हो या ना हो, ठीक है। अब हिजाब जो है ना वो सिर्फ गैर महरम के लिए है, हिजाब हर वक्त जरूरी नहीं कि इंसान हर वक्त हिजाब में रहे, हिजाब सिर्फ जिस वक्त गैर महरम होगा तब हिजाब लिया जाएगा, लेकिन सतर हर वक्त ही उसका यानी कवर होना चाहिए। हाँ, बाज जरूरियात के तहत एक्सेप्शनल सूरतें भी हैं जिनमें के औरत अपना हिजाब खोल सकती है गैर महरम के सामने, मसलन मंगनी है, यानी मंगनी से मतलब है कि किसी ने रिश्ता डाला है और वो लड़की को देखना चाहता है, तो वो मर्द देख सकता है औरत को, ताकि वो बाद में ये ना हो कि उसको ये हो कि मैंने इसको देखा ही नहीं था तो मुझे तो नहीं पता, वो भी सतर उसका कवर रहेगा, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह काजी है, गवाही देने के लिए औरत आती है तो उसका चेहरा देख सकता है। इसी तरह आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या आप इमिग्रेशन के लिए कहीं और खड़े हुए हैं, आप बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वहां पे वो आपको कहते हैं कि आप अपना चेहरा दिखाएं, सिक्योरिटी रीजन है, उसके अंदर आप अपना चेहरा खोल सकते हैं। इसी तरह अगर कोई मसलन औरत मौजूद नहीं है और इलाज कराना है, मर्द ही सिर्फ है, तो फिर उसमें खोला जा सकता है अपना हिजाब। इसी तरह अल्लाह रहम करे कहीं आग लग जाए या कोई ऐसा कोई हादसा हो जाए, तो फिर उसके अंदर भी जाहिर है एकदम उस वक्त ये तो नहीं देखेंगे कि अपनी चादरें पकड़ें और अपनी जिलबाब पकड़ें, उस वक्त तो जैसे तैसे भी इंसान अपनी जान बचाने का करेगा। तो ऐसे कोई है हादसा ऐसा हो जाए, कोई ऐसी जलजला आ गया, कोई ऐसी चीज हो गई है, तो फिर उसके अंदर इतनी सी रुख्सत मिल सकती है कि उसमें अपना फिर हिजाब अगर गैर महरम के सामने खुल भी गया तो इसके अंदर फिर पकड़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हिजाब सतर आदमी के लिए भी है और औरत के लिए भी है, हिजाब सिर्फ औरत के लिए, वो आदमी के लिए नहीं है, ठीक है, समझ आ गई बात। इसलिए कि जो औरत की नजर गैर मर्द पे पड़ना है ना, वो इतना खतरनाक नहीं है जितना मर्द की नजर औरत के ऊपर पड़ना खतरनाक है। आप देखें इस दुनिया में आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी औरत ने किसी मर्द को रेप किया, ठीक है। इसलिए मर्द की तो इज्जत महफूज ही रहती है, औरत की इज्जत है जो नाजुक है, औरत की इज्जत है जो बहुत प्रेशियस है, इसलिए अल्लाह ताला ने औरत को कवर करने का हुक्म दिया है। इसके अंदर उसके लिए खैर और भलाई है, उसकी हिफाजत है, उसकी सिक्योरिटी है, और अल्लाह से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि किसकी सिक्योरिटी किसमें है। जितनी दुनिया के अंदर काम की चीजें हैं, जैसे मतलब ये फ्रूट्स वगैरह हैं, आप देखें सब कवर में है, ऑरेंज को देख लें, केले को देख लें, तरबूज को देख लें, अनार को देख लें, ये नाजुक चीजें हैं, इनको अल्लाह ने कवर के अंदर किया हुआ है। आप कवर के बगैर ये कहीं पड़ी हो तो आपको खाने को दिल नहीं चाहेगा, आप कहते हैं कवर के साथ हो, क्योंकि आपको पता है जो कवर के साथ है ये साफ सुथरी चीज है, ये सही चीज है। जो कवर के बगैर कहीं आप मेज के ऊपर केला बगैर कवर के पड़ा हो छिलके के, तो आप खाएंगे उठा के। इसी तरह आप देखें एक पिक्चर में उन्होंने दिखाया एक लॉलीपॉप है जिसके ऊपर से कवर उतरा हुआ तो उस पर मक्खियां बैठी, जो कवर के साथ है उसके ऊपर कोई मक्खी नहीं बैठी। वजह क्या है कि जब औरत बगैर अपने हिजाब के निकलती है तो उस वक्त वो मर्दों के लिए अट्रैक्शन का बायस बनती है। अब हम, मैं और आप एक दूसरे को देखेंगे तो हम कहेंगे उसमें क्या अट्रैक्शन है, उसमें क्योंकि हमारे लिए एक दूसरे के अंदर नहीं अट्रैक्शन है। लेकिन आपको नहीं पता होता कि मर्द के दिल में किस औरत के लिए अट्रैक्शन हो जाए, ये हम नहीं जानते। तो ये खुद ही से क्रिया कर लेना, मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन अब किसने देखना, ये आपकी अपनी कहने की बातें हैं।